से हम उपकृत करें परम पूज्य गुरु। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजो उनके सतत केवल ज्ञान पाने पूजो उनके सतत केवल ज्ञान पाने। बोली भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोगों ने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो प्रक्रिया आचार्य भगवंतों ने एक सदगृहस्थ के लिए बताई है उस पर विचार किया। जीवन भर हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करके अपनी दृष्टि को निर्मल बनाकर आत्मज्ञान पूर्वक यदि पांच पापों का त्याग कर देते हैं और उन पांच पापों के त्याग करने पर हमारे जीवन में जो गुणवत्ता आती है उस गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए यदि हम अपनी मर्यादाएं स्वयं निर्धारित कर लेते हैं और मन वचन काय की अनर्थकारी क्रियाओं का त्याग कर देते हैं तो हमारी गुणवत्ता और बढ़ने लगती है। चाहते तो हम ये हैं कि हमारा जीवन महान बने, तो जो महान आत्माएं हैं उनके जैसा भी हमारे जीवन में कुछ क्षण हम व्यतीत कर सकें इसके लिए हमने समता की साधना, विभिन्न प्रकार के भोग विलास की सामग्री की मर्यादा, दान पूजा, गुरुजनों की सेवा और पर्व के दिनों में शांत चित्त होकर चारों प्रकार के आहार के त्याग करने की साधना, ये सब अपनाने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है। एक सदगृहस्थ अगर पांच अनुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षा व्रतों को धारण करता है तो इन बारह व्रतों के पालन करने मात्र से वह परंपरा से निर्वाण प्राप्त कर सकता है। दृष्टि की निर्मलता और आत्मज्ञान पूर्वक जो भी आचरण किया जाता है चाहे वह देशव्रत के रूप में हो, चाहे महाव्रत के रूप में हो, वो मात्र पुण्य के अर्जन का कारण नहीं है, वो कर्मों की निर्जरा का भी कारण है। इसलिए हमें अपनी सामर्थ्य के अनुरूप स्वयं अपने जीवन में विचार करके इन व्रतों को, इस जीवन की पद्धति को अपनाना चाहिए। लापरवाही में तो जीवन अभी तक व्यतीत हुआ ही है, हम चाहें तो उसे अनुशासित करके भी बिता सकते हैं। हमने पिछले दिनों यही जीवन का अनुशासन सीखा है, लेकिन ये सब जीवन भर करने के बाद भी इस जीवन से विदा लेने की तैयारी भी हमारी होनी चाहिए। ऐसी स्थिति कि जब ये देह छूटने को है, हम इसे कैसे छोड़ें, इस देह में रह करके हम कैसे जिएं, ये हमने सीखा। तो जब ये देह छूटने लगे तो इसे हम कैसे छोड़ें, इससे कैसे विदा लें, ये तैयारी भी जीवन भर करनी होगी। देह में रहकर भी विदेह की साधना करना ये जीवन जीने का ढंग है, और देह छोड़ते समय देहाशक्ति ना रहे ये जीवन से विदा लेने का ढंग है। जिस घर को अपने हाथ से बनाया हो, सजाया हो, जिसमें वर्षों हम रहे हो, एक दिन उसी घर में अग्नि लग जाने पर क्या कोई उस घर में आशक्त होकर मरना पसंद करेगा, उसमें रहना पसंद करेगा? नहीं, वो तो उसे शीघ्र ही अनाशक्त होकर छोड़ देगा। ठीक ऐसे ही इस देह में हम पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, ये देह हमने अपने लिए स्वयं बनाई है। एक दिन जब हम देखते हैं कि ये देह अशक्त हो गई, यह अब छूटने को है, तो हम इसे सहर्ष छोड़ सकें अनाशक्त भाव से, ये साधना भी साथ साथ करनी चाहिए। इस तरह देह के त्याग की भावना भानी चाहिए। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसिरोजायाम चन्नी प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचनम आहु सल्लेखनाम आर्या अंतः क्रियाधिकरणम तपाफलम सकलदर्शिनः स्तुते तस्मात् यावत् वैभवं समाधि मरणे प्रयतितव्यम्। जब ऐसी कोई स्थिति निर्मित हो, ऐसा कोई संकट या विपत्ति का क्षण हो कि अब जीवन शेष नहीं है, तब धर्माय तनु विमोचनम, तब हम अपने रत्नत्रय धर्म की, अहिंसा धर्म की रक्षा के लिए सहर्ष इस देह का परित्याग कर देते हैं। वो संलेखना कहलाएगी। समतापूर्वक देह को छोड़ देने का नाम संलेखना है, वो भी छूटती हुई देह का। संकट की स्थिति, विपत्ति की स्थिति चार तरह से आ सकती है। किसी जंगल से गुजरते समय हिंसक पशु के द्वारा आक्रमण किए जाने पर पशुकत उपसर्ग, मनुष्य के द्वारा मनुष्य के ऊपर किए जाने वाला आक्रमण मनुष्यकृत उपसर्ग, किसी देव के द्वारा मनुष्य के ऊपर किए जाने वाला उपसर्ग देवकृत उपसर्ग, प्रकृतिकृत उपसर्ग भी है, ओलावृष्टि इत्यादि हो जाना, भूस्खलन हो जाना, तेज हवा के चलने पर पर्वत इत्यादि से नीचे गिर पड़ना, ऐसी सब स्थितियों में जबकि अब देह छूटने को है, तब समता भाव पूर्वक देह को छोड़ना, वो भी काहे के लिए, धर्माए अपने रत्नत्रय और अहिंसा धर्म की रक्षा के लिए। दो तरह से या तीन तरह से कहिएगा प्राण छूटते हैं। एक तो आयु पूर्ण होने पर हम अपनी देह को छोड़ देते हैं, वो कहलाता है मरण च्युत प्रकार का, जिसमें कि हमारी देह और सहज ही आयु पूर्ण होने पर छूट गई है। एक होता है जिसमें कि हम विषभक्षण इत्यादि के द्वारा अकाल में संक्लेश पूर्वक अपनी देह को छोड़ते हैं, वो कहलाता है चावित प्रकार का मरण। और एक जिसमें कि उपसर्ग इत्यादि आने पर धर्म की रक्षा के लिए देह को हम छोड़ते हैं, वो त्यक्त प्रकार का मरण है। चित, जागृत और त्यक्त, ये तीन ढंग हैं देह को छोड़ने के। इसमें से श्रेष्ठ है त्यक्त प्रकार का, जिसमें हम छूटती हुई देह से अपनी आसक्ति हटा लेते हैं और अपने मन को धर्म में लगाए रखते हैं और देह छूट जाती है, वो मरण ही श्रेष्ठ है। देखो तो सब तो जीवन जीने का ढंग बताते हैं, आचार्य भगवंत जीवन जीने का ढंग बताने के साथ साथ इस देह को कैसे त्याग करना यानी किस तरह से मरना ये ढंग बता रहे हैं, ताकि एक बार हम इस तरह से मर सकें कि बार बार जन्म मरण न करना पड़े। जीवन इस तरह से जीना कि बार बार इस संसार में जीवन मरण न करना पड़े, वो एक ढंग है जीने का। और एक मरण का ढंग है जिसमें कि बार बार इस संसार में आकर के जन्म मरण की पीड़ा ना भोगनी पड़े। तब हमें स्वयं विचार करना चाहिए कि हम किस तरह से ऐसी स्थितियां निर्मित होने पर अपने शरीर से ममत्व छोड़कर और इस धर्म की रक्षा कर सकें। वीणा के तार दो स्थितियों में टूटते हैं, एक तो वीणा किसी अनाड़ी के हाथ में दे दी जाए और वो झटके से न बजा पाए और तारों को तोड़ दे, और एक दूसरी स्थिति यह बनती है कि जब किसी वीणा में निष्णात बजाने वाले कलाकार के हाथ में वीणा रखी जाती है, तब संगीत अपने चरम पर पहुंचता है, तब वीणा के तार टूट जाते हैं। सांसें भी इसी तरह से होती हैं। जब कोई अनाड़ी व्यक्ति जो जीवन जीने का ढंग नहीं जानता है और जीवन से निराश होकर के अपनी सांसों के तारों को झटके देकर के तोड़ देता है, विष इत्यादि भक्षण करके संकेश पूर्वक किस तरह जब देह छोड़ी जाती है, वो सब आत्मघात कहलाता है। लेकिन जब जीवन का संगीत हमने अपनी सांसों पर बजा लिया है और अब जीवन जाने को है, देह छूटने को है, तब भी अत्यंत हर्ष विभोर होकर अपने धर्म में स्थित रहकर समता पूर्वक और उस देह को छोड़ देते हैं, तब वो संलेखना या कि समाधि मरण कहलाता है। इतना ही दोनों में फर्क है, और बहुत बड़ा फर्क है। ये सुसाइड नहीं है, ये आइडियल डेथ है, एक आदर्श मृत्यु है। सामान्यतः व्यक्ति जीवन से निराश होकर अपनी देह को नष्ट कर देता है और फिर कई कई बार देह धारण करके दुख भोगता है। हम इस देह से आसक्ति छोड़ देवें तो बार बार देह क्यों मिलेगी? हम इस देह में आसक्त होते हैं, इसलिए देह बार बार धारण करना पड़ती और जिसने देह धारण की है उसे तो छोड़ना ही पड़ेगी। मृत्यु और ध्रुवम, मृत्यु निश्चित है जिसने की जन्म दिया है। यह बात युद्ध के मैदान में अर्जुन से श्री कृष्ण ने कही थी कि तुम सिर्फ निमित्त हो, जिसने देह धारण करी है वे सब मरण को प्राप्त होंगे। कोई शांति से मरण को प्राप्त होता है, कोई संक्लेश पूर्वक मरण को प्राप्त होता है। तुम सिर्फ अपना कर्तव्य का निर्वाह करो। हमारे जीवन में भी जब कोई इस तरह के क्षण आते हैं तब तो हमें क्या करना चाहिए, ये विचार करें। हम अपन सूरज के उगने और डूबने को क्या कहते हैं? सन बर्थ और सन डेथ, ऐसा कहते हैं क्या? सनराइज एंड सनसेट, सूरज उगा है, सूरज डूब जाएगा। देह के छूटने से आत्मा मरती नहीं है, इसलिए कभी भी किसी के मरण होने पर आत्मावसान नहीं कहते, देहावसान जरूर कहते हैं। देह अभी तक थी, अब नहीं है, आत्मा आत्मा तो फिर भी है। ऐसा विचार करके अत्यंत धैर्य पूर्वक देह को छोड़ने का साहस करना चाहिए। हमेशा जो देह से अनाशक्त रहता है वो ही छूटती हुई देह में आशक्त नहीं होता, वरना छूटती हुई चीज को पकड़ने की बहुत इच्छा होती। जितनी कोई चीज छूटती है उस पर उतनी ही पकड़ बढ़ती चली जाती कि अब छूटी, अब गए, अब मरे। और जिसकी आशक्ति नहीं है वो छूटती हुई चीज को, उससे अपनी आशक्ति को हटा करके छूट जाने देता है। असल में चीजों को छोड़ना नहीं होता, अपन ही उनसे बंधे हैं, सो अपन अपने को छोड़ ले में भी तो चीजें अलग ही हैं अपन से। हमने अपने आप को उन चीजों में बांध रखा है, चीजों ने हमें नहीं बांध रखा। ये सब समझते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझते। बाबा जी ने समझाया था ये एक व्यक्ति को, वो कहता था कि क्या करें, हमारी तो बहुत इच्छा है कि आप ही के जैसे हो जावे, लेकिन घर गृहस्थी है, सब हमें पकड़े हैं, कोई छोड़ नहीं चाहते। उन्हें कही कि ध्यान आइयो बते हैं। सो दूसरे दिन जब आया सो देखा कि बाबा जी तो कमरे का खम्मा पकड़े जोर से और खड़े हैं कि ये बचाओ, को खम्मा ने पकड़ लो हमें। वो कहने लगा कि कैसे हो बाबा जी, हम तो सोचते हम अज्ञानी हैं, आप भी ऐसा अज्ञानता भरा काम कर रहे, आप दो ही हाथ से खम्मा पकड़े हो, कह रहे कि खम्मा ने पकड़ दो। कह ले तो भैया हम क्या करें, कहते आप हाथ छोड़ दो अपने दो ही। ने छोड़ दिए, सो खम्मे से अलग हो गए। कह ले जी तो हम तुमसे कह रहे। ये भाव हमारे भीतर सहसा नहीं आएगा, कहने सुनने में तो आता है लेकिन अंतरंग में आना चाहिए। यही भाव उस देह के प्रति, ये तैयारी है संलेखना की। लोग पूछते हैं कि क्या करें, संलेखना की तैयारी कैसे करें? शुरुआत यहां से करनी पड़ेगी कि यह देह मेरे से पृथक है, एक दिन यह सर्वथा पृथक हो जाएगी, छूट जाएगी, तब मैं क्या किस बात के लिए तैयार रहूं? इसके छूटने में मैं हर्ष विषाद ना करूं, ये तैयारी है मेरी। ये तो छूटेगी, इसमें मैं हर्ष विषाद करता हूं, मैं समता भाव धारण करके इसे छोड़ दूं। उपसर्ग आने पर नियम संलेखना की जाती है, जिसमें कि जीवन के बचने के चांसेस हैं, लगता है कि शायद जीवन बच जाएगा, पर फिर भी अभी अनिश्चितता है, बच भी सकता है नहीं भी बच सकता है। ऐसी स्थिति में नियम संलेखना धारण की जाती है, और जिसमें जीवन बचने के कोई संभावना नहीं है, तब जीवन पर्यंत के लिए संलेखना ग्रहण की जाती, वो यम संलेखना कहलाती। नियम संलेखना का मैं आपको एक उदाहरण दूं, अभी आके गया है वो बेटा, हमारे 3-4 साल बाद उसका एमटेक कंप्लीट हुआ, लास्ट ईयर थी उसकी। उसने आकर के मुझे अपने जीवन की वो घटना सुनाई थी कि महाराज ऐसी स्थिति निर्मित हो गई और अब मैं निश्चिंत हो गया हूं कि मैं अपना आत्म कल्याण कर सकूंगा आप सबके आशीर्वाद से। उसने आचार्य महाराज से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, कॉलेज में अब तो प्रोफेसर हो गया है। वो जब अपने सर्वे के लिए, माइनिंग के लिए और एक खदान में पहुंचता है, ओपन कास्ट माइनिंग थी, लेकिन ब्लास्टिंग तो होती है, पूरा का पूरा पहाड़ नीचे खिसक करके आ जाएगा ब्लास्टिंग में। पर उसमें जो सेफ्टी के पैड होते हैं, सेफ्टी पैड, जब वार्निंग होती है, सायरन बजता है कि अब ब्लास्टिंग का समय 2 मिनट बाकी है, आप सेफ्टी पैड तक पहुंच जाएं, तो उसने सुनाया मुझे कि हम सब दौड़ करके वहां तक पहुंचने वाले थे, सब तो पहुंच गए, मैं वहां से थोड़ी दूर रह गया और उतने में ब्लास्टिंग हो गई, पूरी पहाड़ी थर्रा गई, तो पैर फिसल गया, फिसल गया तो नीचे लुढ़कना शुरू हुआ और उसके साथ साथ ही उसके ऊपर से एक बहुत बड़ा सारा पत्थर भी लुढ़क रहा है। अब ऐसी स्थिति में कोई चाहे तो घबरा करके प्राण छोड़ दे, हो ही जाएगा, अपन तो सुन करके भी मुश्किल में पड़ गए कि अब क्या होगा। उसने सुनाया कि उसी क्षण मुझे पंच परमेश जी का स्मरण आया, आचार्य महाराज का स्मरण आया, और उपदेश हमने बहुत सुने थे, तुरंत ही चारों प्रकार के आहार का इस उपसर्ग के टलने तक के लिए त्याग। अगर प्राण शेष रहे तो ही अन्न जल ग्रहण करूंगा, प्राणांत हो गया तो मेरा अन्न जल का, चारों प्रकार के अन्न जल का सबका त्याग, और पंच परमेष्ठी मेरे लिए सहाय है, नमोकार मंत्र और आचार्य महाराज की जय बोलकर लुढ़क रहा है, निरंतर नमोकार की जाप चल रही है और पूरे 400 फीट नीचे तक जाने के बाद वो पत्थर, सारे लोग ऊपर से देख रहे हैं कि ये पत्थर भी उसी के ऊपर जाकर के गिरेगा, लेकिन वो लड़कता हुआ पत्थर भी उसी के साथ जाकर के वहां शरीर से जाकर टिक गया। सब नीचे उतर करके आए कि देखें जीवन शेष है कि नहीं, तो नीचे देखा तो सिर्फ बेहोश हुआ था, सांस तो बाकी थी, होश में लाए तब भी माला ज्यों की त्यों चल रही है, नमोकार मंत्र चल रहा है। बताइए कितने साहस और धैर्य का काम है। ऐसा व्यक्ति ही अपनी छूटती हुई देह से अनाशक्त होकर उसे छूट जाने देगा, लेकिन किसे नहीं छूटने देगा, पंच परमेश्वर और अपने धर्म को नहीं छोड़ेगा। देह तो छूट जाती, देह के लिए तो हम अपने धर्म को छोड़ देते हैं। आज के समय में जरा सी कोई तकलीफ हुई, हॉस्पिटलाइज कर दिया, सलाइन लग रही है, बॉटल लग रही है, ब्लड चढ़ रहा है, शायद बच जाएंगे, जबकि देह छूटने को ही है। और बच्चे ये सोचते हैं कि जैसे हम पिता के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सेवा टहल कर रहे हैं, नहीं, ये वास्तविक सेवा नहीं है। वास्तविक सेवा तो वो है कि जब हम उन्हें सचेत रखें इस बात के लिए कि भूलना नहीं, जीवन भर जो कुछ किया है, अंतः क्रियाधिकरणम तपा फलम सकल दर्शिना स्तुते। सर्वज्ञ भगवान ने कहा है कि अगर जीवन भर तपस्या की है तो उसका फल क्या है। तस्मात यावत वैभम समाधि मरने प्रयतितव्य, यथा शक्ति जीवन के अंत समय निकट आने पर संलेखना ग्रहण करना, ये तपस्या का फल है। जैसे जीवन भर या 365 दिन किसी ने पढ़ाई की हो और इम्तहान देने पर मालूम पड़ेगा कि आपने कैसा पढ़ा था, ऐसे ही मरण के समय मालूम पड़ेगा कि आपने कैसी तपस्या करी थी, कैसे व्रत नियम का पालन किया था, कैसे अहिंसा धर्म पर आप जीवन भर रहे। तो अंत समय में हॉस्पिटल ले जाना जरूरी नहीं है, बल्कि अपने धर्म को संभालना जरूरी है। कर्मानंद जी हुए हैं, जैन नहीं थे, लेकिन जैन दर्शन में बहुत रुचि रखते थे। षट दर्शन उन्होंने पढ़े और जैन दर्शन पढ़ते समय उन्होंने सारी बातें तो कहीं की अच्छी हैं, सिर्फ एक ही बात इन लोगों की ठीक नहीं है, ये लोग आत्मघात करते हैं और उसे धर्म मानते हैं। इनकी संलेखना तो आत्मघात ही है, ऐसा उनके मन में आता था और लोगों से कहते भी थे कि भाई और सब बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ये मरण का क्या मामला है, ये तो एक तरह से अपना आत्मघात करना हो गया, ये तो चींटी को नहीं मारने वाले लोग हैं और कहते हैं कि मरण की तैयारी करनी चाहिए, ये कुछ समझ में नहीं आया। और उनका रोज का नियम था कि गीता का पाठ किए बिना जल ग्रहण नहीं करेंगे, और पाठ तो करेंगे शुद्धि पूर्वक, और रोग हो गया बहुमूत्र, क्षण क्षण में जो है अशुद्धि होने लगी, अब पाठ भी नहीं कर पाते हैं और मुश्किल में है, तब मन में विचार आया कि अरे जैनियों के यहां पर ठीक लिखा था कि इससे पहले कि मरण आवे तैयारी कर लेना, नहीं तो धर्म छूट जाएगा, देह तो छूटेगी छूटेगी, धर्म भी छूट जाएगा। अगर संकल्प कर लिया उन्होंने बिस्तर पर पड़े पड़े कि इस बहुमूत्र रोग से अगर मैं मुक्त हो गया तो जैनियों का साधु बनकर संलेख न लूंगा, और वास्तव में वे उस रोग से मुक्त हो गए, छुल्लक बने थे और छुल्लक बन करके उन्होंने समाधि पूर्वक मरण किया था। यह आचार्य महाराज ने घटना सुनाई थी। विनोबा के जीवन में भी यही स्थिति निर्मित हुई, उन्होंने भी संथारा ग्रहण किया था इसी पद्धति से, संलेखना की पद्धति से। संलेखना इतनी महत्वपूर्ण है, जीवन के अंत में धर्म नहीं छूटे, देह तो छूट ही रही है, लेकिन हमारी सारी कोशिशें इस छूटती हुई देह को बचाने की होती हैं, छूटते हुए व्रत नियम और संयम को बचाने की नहीं होती है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि पूरे जीवन भर अगर हमने धर्म का पालन किया है, अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया हमने अगर जीवन भर की है, तो अब अंत में क्यों हम हार माने, अंत में क्यों हम चूक जाएं, अत्यंत सावधानी पूर्वक देह से अनाशक्त होकर उसे छोड़े। जब विनोबा भावे के पास से आचार्य महाराज के पास समाचार आया 1982 में, 1981 में, 82 नहीं 1981 में, चतुर्मास के दौरान कि विनोबा बाबा ने संथारा ले लिया है और उन्होंने मात्र शहद और दूध, ये दो ही चीजें रख रखी हैं। तो आचार्य ने फौरन समाचार दिया, उनको भेजा कि कहना उन विनोबा से कि शहद तो खाने योग्य नहीं है, सब जीवों के लिए सज्जन पुरुषों के योग नहीं है, वह तो जूठन है मधुमक्खियों का, जूठन को सज्जन पुरुष नहीं खाते। जैसे ही वहां समाचार पहुंचा तो उन्होंने कहा कि आचार्य महाराज की आज्ञा सिर माथे, लेकिन इतनी देर से मुझे क्यों बताया, मैं तो जीवन भर खाता रहा, पहले बता देते तो मैं कब से छोड़ देता, अब तो मैं शेष जीवन शहद का भी त्याग करता हूं, अकेला दूध रखूंगा, और दूध के बाद भी सिर्फ पानी रखा, ठीक वही प्रक्रिया। और उस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी सबको मालूम है, उनकी तरफ से समाचार पहुंचा कि बाबा को तो दवा लेनी ही चाहिए मरण के समय। तो मालूम उन्होंने क्या कहा कि अब मेरे और ईश्वर के बीच में दवा नौर कम एक दिन और कम। और ठीक सुबह प्रत्युष की वेला में जब भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण हुआ दीपावली के दिन, तब उन्होंने अपनी देह का परित्याग किया था। ये उदाहरण है हम सब के लिए आंख खोलने वाला। जीवन भर व्रत नियम और संयम करने वालों को हमने जीवन के अंत में हा पानी हा भोजन हा भैया हे मताई हे बाप पिता ऐसा करते देखा है, जीवन के अंत में हाहाकार मचाते हुए देखा है कि अब छूटे प्राण अभाव को नहीं है। नहीं भाई, ये जीवन से विदा लेने की प्रक्रिया नहीं है। हम जीवन से विदा लें तो बहुत आनंदित होकर हर्ष पूर्वक समता भाव रख करके संकलेश पूर्वक जीवन से क्यों विदा लें। ऐसे हम इस प्रक्रिया को समझें, देखेंगे अपन कब लेना है, ये तो समझ में आ गया, कैसे लेना है। ये प्रक्रिया बहुत बड़ी है, उस कैसे लेने वाली स्थिति को अपन समझेंगे, लेकिन साधना जीवन भर करनी पड़ेगी, तभी हम जीवन के अंत में ये कार्य कर पाएंगे। कोई ये सोचे कि अभी क्या करना, जब अंत निकट आएगा तब कर लेंगे, नहीं, तैयारी तो अभी से करना पड़ेगी, वरना जीवन भर का संस्कार जीवन के अंत में हमें इतने बड़े साहस के लिए प्रेरणा दे ही नहीं सकता। जो जीवन भर किया है वही ध्यान में रहेगा अंत में भी। मैं इसकी एक घटना सुनाता हूं हमेशा, आएगी तो उसमें हंसी, लेकिन संदेश लेना अपने स्वयं के लिए जीवन के लिए। एक कपड़े की दुकान के सेठ जी के चार बेटे थे, सुनिए कहानी, सेठ जी वगैरह की तो सुनना चाहिए आप सबको, नहीं सुनी होगी आप। चारों बेटे बड़े हो गए, दुकान संभालने लगे, लेकिन पिताजी फिर भी दुकान पर बैठते थे, क्या पता कैसी संभालते हैं, मिटा न देवे, हमने इतनी मेहनत से बनाई। अब एक दिन पिताजी अस्वस्थ हो गए और डॉक्टर ने कह दिया कि अब की बार तो स्वस्थ होने के कोई चांसेस नहीं है, अब पड़े हैं बिस्तर पर। वो दिन आखिरी दिन था उनके संसार से विदा लेने का, सब देख रहे हैं, लेकिन जब जब उनकी बेहोशी टूटती थी तो अपनी जीवन साथी से पूछते हैं, वो बड़ा वाला बेटा कहां है, तो जीवन साथी ने कहा कि देखो अब सबसे मुंह न करो, अब जीवन का आखिरी समय आ गया जी, यहीं तो है बड़ा वाला बेटा, आपके पास ही बैठा है, आप इतने क्यों व्यथित हो रहे हैं। उससे छोटा मंझला वाला कहां है, अरे भाई इतनी आसक्ति वो भी यहीं पर है, आप इतने चिंतित क्यों हैं? उसने भी दौड़ से कहा कि पिताजी यहीं तो बैठा हूं मैं, आप मोह छोड़ो। तीसरे नंबर वाला कहां है? अब तीसरे नंबर वाला बोला कि मैं पैर दबा रहा हूं, आपके पास ही बैठा हुआ हूं, आप क्यों इतने चिंतित हैं, आप तो भगवान का नाम ले। कहते हैं कि वो थोड़े थोड़े से उठने की तैयारी करने लगे तो सबने पकड़ करके उन्हें लिटा दिया कि क्यों आप व्यतीत हो रहे हैं। उठते उठते उन्होंने कहा कि चौथा वाला कहां है? चौथे वाले ने बिल्कुल उन्हीं के सिर के पास खड़ा था, कहने लगे पिताजी ये खड़े हैं, तो अब की बार तो वो सबका हाथ छुड़ा के खड़े ही हो गए, कहने लगे चार ही ते हो तो दुकान पे को है। आगे समझ में? अब ऐसा व्यक्ति जो है वो मरेगा तो कहां जाएगा भैया? ऐसे नहीं करना। हमारा कहने का आशय है इतनी आसक्ति हमें मरण के समय कहां ले जाएगी, हमारे जीवन भर किए हुए धर्म से हम च्युत हो जाएंगे उस आसक्ति के चलते। इसलिए तैयारी तो जीवन भर करनी पड़ेगी। गुरुमूले यतिनिचिते चैत सिद्धांत वारदी सद्घोषे मम भवतु जन्म जन्मनी सन्न सन समन मितम मरणम। मुझे इस जीवन में मरण से कोई भी भय नहीं है। कब? जबकि मेरा मरण, मैं भावना भाता हूं जीवन भर कि अपने गुरु के चरणों में मेरी ये देह मेरे ये प्राण छूटे। अगर श्री गुरु का सानिध्य ना मिले तो साधु जनों के उपस्थिति में मैं अपनी देह को विसर्जित करूं, अगर साधु जनों का सानिध्य भी मेरे कमती पुण्य के कारण न मिल सके तो चैत्य सिद्धांत वारदी सद्घोषे, तब मैं ऐसे स्थान पर मरण करूं जहां की चैत्यालय से बजने वाली घंटियों की मधुर ध्वनि और पूजा करने वालों के मंगल गान सुनाई पड़ रहे हों मेरे कानों में, और या फिर कोई मेरे पास बैठा हुआ मुझे पंच नमस्कार मंत्र सुना रहा हो। फिर मुझे इस देह को त्याग करने में कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। ऐसा हम रोज रोज भाव बनाए कि मरण के समय, उसमें लिखा है तुलसीदास जी ने कि बहुत जतन करने पर भी अंत समय राम का नाम याद रहे तो सौभाग्य समझना। हाँ, वो पंक्ति याद नहीं आ रही है, अंत समय जतन कराई तब भी जो है राम नाम, अगर भगवान का नाम आखिरी समय मरण के समय, मरण के समय तो किसकी शरण में जाने का मन होता? डॉक्टर की शरण में। मरण के समय तो विषक अगर भैषज अगर कोई है, वैद्य कोई है, तो वो तो भगवान है जो हमें जन्म मरण के रोग से मुक्त कर देंगे। ये तो देह अकेले की सेवा टहल करने वाले रोग हैं, वे आत्मा की सेवा शुश्रूषा करने वाले हैं, उनकी हम शरण लें और इस देह को छोड़ने के लिए तैयार रहें। जब भी छूटने लगे तो समता भाव पूर्वक छोड़ें। ये रोज रोज हम भावना भाकर, इस भावना से भी हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला। जब जब विषय में रच पच कर कंटक होता हो, अर्धनिशाता सन्नाता वन में वन छा।
भव्य सागर जी ने अपनी कविता में जाने कितनी सारी बातें कह दी, जो जो उनको जो सोचते हैं अपने आचार्य के बारे में, श्यामा सागर जी के बारे में, अपने जीवन के बारे में सब कुछ कह दिया। कई बार तो मुझे लगा महाराज जी की जैसे आप गद्य को गा रहे हैं, ऐसा भी लगा, और कभी लगा कि आप एक कविता से दूसरी कविता में पदार्पण कर गए हैं और बहुत सारी कविताओं की एक कविता हो गई। लेकिन आज बहुत अच्छा लगा कि मुनिश्री ने अपने मन की बात तरह तरह से दृष्टांतों में कहानियों से एक मैसेज बनाते हुए संदेश के रूप में कह दिया। मित्रों, अब वह क्षण है कि जब हम श्यामा सागर जी को सुनने का अवसर प्राप्त करेंगे। श्यामा सागर जी की कविताएं यहाँ तो आप सुने हैं, कृपया उन्हें जहां से भी मिले प्राप्त करके पढ़िए। अभी नई दुनिया में उनके नए संग्रह अपना घर की समीक्षा छपी थी, उस समीक्षा लिखी थी खंडवा के एक समीक्षक डॉक्टर प्रताप राव कदम ने, और उसका हेडिंग भी दिया गया था, वो उनकी कविता से ही था। उनकी तमाम कविताओं में जो सबसे छोटी कविता है लेकिन जो सबसे कठिन कविता है, दिखने में नहीं अर्थ में, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। दो लाइन की कविता है, अगर आप लाइनों में लिखें, उसका शीर्षक है साधना। अभी मुझे और धीरे कदम रखना है, अभी मुझे और धीरे कदम रखना है, अभी तो चलने की आवाज आती है। ये क्या है चलने की आवाज, चलना क्या है चलने की आवाज? चलने की आवाज सांसारिक माया है, मोह है, ममता है, अहंकार है। हम दिखा रहे हैं कि हम साधना कर रहे हैं, अभी तो मुझे और धीरे कदम रखना है, अभी तो चलने की आवाज आती है। ऐसी कविताएं जिस कवि ने लिखी हो वो मुनि ही हो सकता है, और वो क्षमा सागर ही हो सकते हैं।
भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, भगवान कितना बड़ा है? मैंने एक बच्चे से पूछा। भगवान कितना बड़ा है? मैंने एक बच्चे से पूछा। उसने मुस्कुराकर अपने दोनों हाथ फैलाए और जैसे मुझे समझाया कि इतना बड़ा। भगवान कितना बड़ा है? मैंने एक बच्चे से पूछा। उसने मुस्कुराकर अपने दोनों हाथ फैलाए और जैसे मुझे समझाया कि इतना बड़ा। तब सचमुच मुझे भी लगा कि जितना जिसके जीवन में समा जाए भगवान उतने ही बड़े। अपने बच्चों को डराने धमकाने, हमने कुछ डरावने चेहरे अपने लिए बनवाए थे। अपने बच्चों को डराने धमकाने, हमने कुछ डरावने चेहरे अपने लिए बनवाए थे। बच्चे कुछ दिन डरते रहे, फिर असलियत जानकर हंसते रहे। बच्चे कुछ दिन तो डरते रहे, फिर असलियत जानकर हंसते रहे। अब बच्चे बड़े हो गए, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारे चेहरे लगाकर हमें ही डरवा रहे। चिड़िया आई, उसके करीब एक चिड़िया और आई, चहचहाई। चिड़िया आई, उसके करीब एक चिड़िया और आई, चहचहाई। सारा आकाश भर गया चिड़िया की चहचहाट से, सारा आकाश भर गया चिड़िया की चहचहाट से। जीवन का रीतापन भर नहीं पाया आदमी परस्पर मधुर संवाद से। जीवन का रीतापन भर नहीं पाया आदमी परस्पर मधुर संवाद से। चिड़िया आई, उसके करीब एक चिड़िया और आई। चिड़िया ने अपनी चोंच में जितना समाया उतना लिया उतना ही पिया। चिड़िया ने अपनी चोंच में जितना समाया उतना पिया उतना ही लिया। सागर में जल खेतों में दाना बहुत था, सागर में जल खेतों में दाना बहुत था। चिड़िया ने घोंसला बनाया इतना जिसमें समा जाए जीवन अपना, चिड़िया ने घोंसला बनाया इतना जिसमें समा जाए जीवन अपना। संसार संसार बहुत बड़ा था, चिड़िया ने रोज एक गीत गाया ऐसा जो धरती और आकाश सब में समाया। चिड़िया ने रोज एक गीत गाया ऐसा जो धरती और आकाश सब में समाया। चिड़िया ने सदा सिखाया एक लेना देना सवाया, चिड़िया ने सदा सिखाया एक लेना देना सवाया। लोगों के यहां पर अब बहुत जल्दी घर में बंटवारा हो जाता तो, और उसके साथ कहते हुए ये सुना जाता कि हमारे यहां तो अच्छे से प्रेम से होगा सब है। हाँ, मतलब कति उपद्रव नहीं भाव, सब अच्छे से हो गया। अब जब प्रेम ही है तो भाव खाए, हमें ये समझ में नहीं आया इसलिए हमने लिखी। घर का बंटवारा हो गया, जमीन जायदाद सब बट गई। घर का बंटवारा हो गया, जमीन जायदाद सब बट गई। अमराई और कुआं आधे आधे हो गए, जो नहीं बटने वाली चीजें थी। अमराई और कुआं आधे आधे हो गए। अब मेरे हिस्से का आकाश मेरा और उसके हिस्से का आकाश उसका है। अब मेरे हिस्से का आकाश मेरा और उसके हिस्से का आकाश उसका है। सवाल ये नहीं है कि किसे कम मिला और किसके हिस्से में ज्यादा आया है, सवाल ये नहीं है कि किसे कम मिला और किसके हिस्से में ज्यादा आया है। मेरी पीड़ा तो अपने ही बट जाने की है, सुना है घर का बंटवारा। मैंने कई बार उससे कहा कि सफेद से सफेद पर मत लिखा करे, इस तरह लिखना कहां दिखता। मैंने कई बार उससे कहा कि सफेद से सफेद पर मत लिखा करे, इस तरह लिखना कहां दिखता है। उसका कहना है कि सवाल लिखने का है, दिखने का ख्याल एकदम झूठा है। उसका कहना है कि सवाल लिखने का है, दिखने का ख्याल एकदम झूठा है, और फिर सफेद पर काला लिखना अच्छा भी तो नहीं लगता, और फिर सफेद पर काला लिखना अच्छा भी नहीं लगता। सफेद पर तो सफेद ही लिखा जाता है, तब कितना भी लिखो कागज एकदम सफेद रहा आता है। यात्रा पर निकला हूँ, लोग बार बार पूछते हैं कितना चलोगे, कहाँ तक जाना। यात्रा पर निकला हूँ, लोग बार बार पूछते हैं कितना चलोगे, कहाँ तक जाना है। मैं मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाता हूँ कि किससे कहूँ कि कहीं तो नहीं जाना। यात्रा पर निकला हूँ, लोग बार बार पूछते हैं कितना चलोगे, कहाँ तक जाना है। मैं मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाता हूँ कि किससे कहूँ, कहीं तो नहीं जाना है। मुझे इस बार अपने से चलकर अपने तक आना, मुझे इस बार अपने से चलकर अपने तक आना। यात्रा पर निकला हूँ, लोग बार बार पूछते हैं। उसने कुछ नहीं जोड़ा, उसने कुछ नहीं जोड़ा, पहनने का एक जोड़ा भी लोग बताते हैं कि उसके पास नहीं मिला। उसने कुछ नहीं जोड़ा, लोग बताते हैं पहनने का जोड़ा भी उसके पास नहीं मिला। जिंदगी भर अपना सब देता रहा और दे देकर सबको जोड़ता रहा, लोग कहते हैं उसने कुछ नहीं जोड़ा। एक सब कविताओं के पीछे कोई ना कोई घटना है, मैं वो सब सुनाऊं तो बहुत लंबा होगा, इसलिए मैं सारी कविताएं और जल्दी से सुना दे रहा, क्योंकि घटना हर एक के पीछे और एक ना एक तो होती ही है। एक घटना मुझे याद आ गई, मैं सिलवानी एक गांव है वहां पर रुका था, तो वहां एक दिन सामायिक के समय पर बहुत तेज तेज आवाज आने लगी। मैंने कहा कि भैया ये इतना हल्ला काहे का हो रहा, तो बोले जाके देखते आते हैं। तो देख के आए, बोले मकान बन रहा उनका। हमने कहा अभी शुरू हुआ क्या? कहते नहीं बन तो बहुत दिन से रहा। फिर हमने कहा इतनी आवाज क्यों आ रही? बोलते वो एक दीवार थोड़ी टेढ़ी थी, उसको तोड़ रहे। मैंने फौरन देखा कि बनता चुपचाप है टूटता आवाज के साथ, बनता चुपचाप है टूटता आवाज के साथ है। जिंदगी के दौर में जाने क्यों, अब आवाज ही आवाज है, बनता चुपचाप है। हम लोगों के मन में, हमारे भावों में कितनी तो बातें रहती हैं जो अपन किसी से शेयर भी नहीं करते। जो अपन अपनी तरफ देखें तो अपने को भी अपने से कई बार बड़ी ग्लानी होने लगती है। आज चिड़िया देर तक मुझे एक तक देखती रही, आज चिड़िया देर तक मुझे एक तक देखती रही, फिर सहमी और सहसा उड़ गई, फिर सहमी और सहसा उड़ गई। मैं दिन भर उदास रहा कि मैंने ऐसा क्यों सोचा कि चिड़िया का एक पिंजरा होता, मैं दिन भर उदास रहा कि मैंने ऐसा क्यों सोचा कि चिड़िया का एक पिंजरा होता। समझ गई कि ठीक आदमी नहीं है, जाना चाहिए यहां से, पिंजरा बंद करेगा ये। मैंने आकाश से कहा तुम बहुत ऊंचे हो, मैंने आकाश से कहा तुम बहुत ऊंचे हो। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि मेरी कविता खत्म हो गई। सरोज कुमार जी को कहना पड़ा, मैंने आकाश से कहा, अपनी आदत बदलनी पड़ी आपको, वो कविता नहीं बदलेंगे, आपको आदत बदलना पड़ेगी समझने की। मैंने आकाश से कहा तुम बहुत ऊंचे हो, आकाश ने मुस्कुरा कर कहा तुम मुझसे भी ज्यादा ऊंचे हो, आकाश ने मुस्कुरा कर कहा तुम मुझसे भी ज्यादा ऊंचे हो। मैंने सागर से कहा तुम खूब गहरे हो, सागर ने लहरा कर कहा तुम मुझसे भी अधिक गहरे हो, सागर ने लहरा कर कहा तुम मुझसे भी अधिक गहरे हो। मैंने सूरज से कहा सूरज दादा तुम बहुत तेजस्वी हो, मैंने सूरज से कहा कि सूरज दादा तुम बहुत तेजस्वी हो। सूरज ने हंस कर कहा तुम मुझसे भी कई गुने तेजस्वी हो, सूरज ने मुस्कुरा कर कहा तुम मुझसे भी कई गुने तेजस्वी हो। फिर मैंने आदमी से कहा कि भाई तुम महान हो, फिर मैंने आदमी से कहा कि भाई तुम महान हो। आदमी झट से बोला तुम ठीक कहते हो। उसने स्वीकार कर लिया। वो जो बीच में उसको निकालने की बात आई थी, बहुत पहले मैंने उस पर लिखा था, मैंने चिड़िया को घोंसला बनाते देखा है, मैंने चिड़िया को घोंसला बनाते देखा है, मैंने उससे दाना चुगते और झट से आकाश में उड़ते देखा है, मैंने उससे दाना चुगते और झट से आकाश में उड़ते देखा है। मैं चाहता हूँ चिड़िया भी मुझे ये सब सिखाए, मैं चाहता हूँ कि चिड़िया मुझे ये सब सिखाए कि किस तरह जमीन से जुड़े रहकर आकाश में उड़ा जाता है, कि किस तरह जमीन से जुड़े रहकर आकाश में उड़ा जाता है, कि किस तरह आकाश में उड़ने का एहसास एक घोंसले में रहकर भी जिंदा रखा जाता है, कि किस तरह आकाश में उड़ने का एहसास एक घोंसले में रहकर भी जिंदा रखा जाता है। वही मेरा उसमें भी भाव था। मेरे ख्याल से 5 बज गया। हाँ, वो लास्ट माना, वो एकदम खुल गई वो कविता, ये तो सुनाऊं गई। माना कि हम में भगवान बनने की योग्यता है, माना कि हम में भगवान बनने की योग्यता है, पर इस बात पे हम इतना अकड़ते क्यों हैं? वो तो चीटी में भी है। माना कि हम में भगवान बनने की योग्यता है, पर इस बात पर हम इतना अकड़ते क्यों हैं? वो तो चीटी में भी है। सवाल सिर्फ योग्यता का नहीं, हूबहू होने का है। सवाल सिर्फ योग्यता का नहीं, हूबहू होने का है। स्वयं को भगवान मानने और मनवाने का नहीं, स्वयं भगवान बन जाने का। स्वयं को भगवान मानने मनवाने का नहीं, स्वयं भगवान बन जाने का है। और फिर इस बार ना सही भगवान, और फिर इस बार ना सही भगवान, कम से कम बन तो जाए एक बेहतर इंसान, तो अपने आप में पूरा हो जाएगा। सबको छोड़कर मैं अपने को खोजने निकला, सबको छोड़कर मैं अपने को खोजने निकला, लोगों ने इसे मेरी अकर्मण्यता और पलायन कहा, लोगों ने इसे मेरी अकर्मण्यता और पलायन कहा। मेरा रास्ते पर निश्चल निरावरित चलना लोगों को पागलपन लगा, मेरा रास्ते पर निश्चल निरावरित चलना लोगों को पागलपन मना लगा। मेरी सर्व मैत्री को लोगों ने अहंकार कहा, मेरी सर्व मैत्री को लोगों ने अहंकार कहा, मेरी सरलता को लोगों ने कायरता कहकर खूब मखौल उड़ाया, मेरी सरलता को लोगों ने कायरता कहकर खूब मखौल उड़ाया। मैं चुप रहा और चुपचाप चलता रहा, चलते चलते अपने में खो गया नहीं रहा, चलते चलते अपने में खो गया नहीं रहा। तब से लोगों ने मुझे देवता कहा, तब से लोगों ने मुझे देवता कहा। अब मैं उनका बनाया पत्थर का देवता हूं, अब मैं उनका बनाया पत्थर का देवता हूं। अचरज की बात है कि जीते जी मुझ आदमी में जो देवत्व किसी ने नहीं देखा, उसे आज मेरी प्रतिमा में कैसे देखूं। ऐसा करते हैं अपन, बुत परस्ती जिसको कहते हैं। अब ये वाली तो दूसरा चैप्टर खुल गया, अब क्या करें? नहीं मतलब ये नहीं सुनाएं क्या? ये भी सुनाएं। वो अपना घर खोलते खोलते वो दूसरी कविताएं खुल गई। संबंध और घर का पहले मेरा कॉन्सेप्ट क्या था, फिर दूसरा, बस इतना ही। यहां आदमी पहले अपने मन का एक घर बनाता है जो बनते वक्त बहुत बड़ा बनता है, यहां आदमी अपने मन का एक घर बनाता है जो बनते वक्त बहुत बड़ा बनता है, पर रहते रहते छोटा लगने लगता है, फिर रहते रहते छोटा लगने लगता है, फिर मजबूरन उसे एक घर और बनाना पड़ता है, फिर मजबूरन उसे एक घर और बनाना पड़ता है। आदमी वही रहता है घर बदल जाता है, आदमी वही रहता है घर बदल जाता है। संबंध को देखें, संबंधों के बीच पहले एक दीवार हम खुद खड़ी करते हैं। मैंने घर बनते देखा तो वो उसमें जो खिड़की जहां लगानी होती ना, तो ऐसी थोड़ी हवा में खिड़की लगाते हैं, वो पहले दीवार खड़ी करते हैं, फिर आधी सी हो जाती फिर उस पर खिड़की रखते हैं। तो संबंधों के बीच पहले एक दीवार हम खुद खड़ी करते हैं, फिर उसमें एक खिड़की लगाते हैं। संबंधों के बीच एक दीवार हम पहले खुद खड़ी करते हैं, फिर उसमें एक खिड़की लगाते हैं। जिंदगी भर करीब रहकर भी फिर हम खुलकर कहां मिल पाते हैं। संबंधों के बीच एक दीवार हम पहले खुद खड़ी करते हैं। वो जो कह रहे हैं जिससे कि मुझे जो सबसे वो मिलना तो चाहिए, मिली नहीं। हाँ मिल गई। आपने पहले ढूंढने में मदद करी होती तो और जल्दी मिल जाते। कई बार जीवन में ऐसा घटित होता है जो कि पीड़ादायक होता है, और वहां से पत्थर आता है जहां से कि फूल की अपेक्षा हो, तो कैसा लगता है? आदमी है, साधु भी आदमी है, कोई भगवान तो नहीं बन गए। तो ऐसा जीवन में घटित हुआ, और उस समय मैंने अपनी जो अभिव्यक्ति की वो है इसमें, और जोर से उछालो, फेंको पत्थर और तोड़ दो दर्पण, और जोर से पत्थर उछालो, तोड़ दो दर्पण। दर्पण तोड़ने से पहले इतना जरूर देख लेना, दर्पण तोड़ने से पहले इतना जरूर देख लेना कि कहीं दर्पण में बना तुम्हारा प्रतिबिंब न टूट जाए। उछालो पत्थर, तोड़ दो दर्पण, पर दर्पण तोड़ने से पहले इतना जरूर देख लेना कि कहीं दर्पण में बना तुम्हारा प्रतिबिंब न टूट जाए। और होता यही। फिर दूसरी प्रतिक्रिया थी, प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए एक साधु को।